وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. तो अब इंसान के जहन में ये बात आती है ना, हो सकता है कि इनमें से कोई हो जो बहुत यानी नेक हो, जो बहुत ऐसे हो, बहुत ही इन्होंने नेकियां की हो, लोगों की भलाई का बहुत काम किया होगा। जैसे अरब क्या थे, अरबों में ना बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी थी। मिसाल के तौर पे एक उनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी जो थी वो मेहमान नवाजी की थी। इस कदर मेहमान नवाज होते थे कि यानी उनके पास मेहमान आ जाता था ना, तो चाहे वो कोई जानने वाला है नहीं है, इस चीज़ की परवाह किए बगैर जो घर में होता वो उठा के ले आते। हती कि कुछ का तो ये हाल था कि वो सारी रात आग जला के रखते थे कि कोई भी काफला गुजरता आता जाता या कोई भी रास्ता भटका हुआ मुसाफिर हो, आग देख ले तो आ जाए, यहाँ पे उसको खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा। क्योंकि उस वक्त कोई होटल वगैरह तो थे नहीं, यानी वैसे ही करते थे बस मेहमान नवाजी। ये नहीं, उनको तो खैर कोई इस तरह आखरत में कुछ मिलने का वो नहीं था कि वो कोई उसके लिए कर रहे थे। इसीलिए कयामत के दिन आप अब सोचेंगे कि भाई अगर उनके साथ ये सलूक होगा और फरिश्ते इस तरह उनके जाने निकालेंगे, वॉट अबाउट देयर गुड डीड्स, उनके नेक अमाल का क्या हुआ फिर? तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि तवज्जो की हमने, आए हम तरफ उन तरफ उसके जो उन्होंने नेक अमल किए थे। अमिलु मिन अमल, इनसे मुराद क्या है, अमल कौन से, जो नेक अमल, तो उनको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल गुबार। मैंने आपको बताया, क्या बताया, हबा अन का। ये देखें आप सूरज की रोशनी में देखें जो पार्टिकल्स हैं, ये कोई कुछ वेट रखते हैं, कोई इनका वेट है, या कोई इनकी वजह से कोई कमी बेशी हो रही है, कुछ भी नहीं। इनका वजन करना चाहें क्या निकलेगा, तो इस तरह उनकी बड़ी बड़ी नेकियां हो जाएंगी। अब बाज दफा आपके साथ कोई बहुत ही भलाई का काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, किसी कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनवा देता है, कोई बहुत अच्छा कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट बनवाता है, कोई कुछ करता है, और आपसे कुछ लेता भी नहीं है, कुछ मांगता भी नहीं है, तो आपका दिल छोता है कि देखो ना इसको तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। लेकिन देखें इसे तो इसका इतना अच्छा नेक अमल है कि इसके ऊपर तो इसको जन्नत मिलनी चाहिए, और देखो ये यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए कितना करता है। तो बात ये है कि किसी भी नेक अमल की एक्सेप्टेंस के लिए, कबूलियत के लिए जो शराइत है ना, उनमें एक है ईमान। ईमान की शर्त है, ईमान के बगैर तो कोई भी नेक अमल कबूल है ही नहीं। और फिर क्या है, इखलास, कि वो सिर्फ अल्लाह की खातिर किया जाए, इखलास होना चाहिए उसके अंदर। अल्लाह के लिए नहीं किया गया तो फिर वो अल्लाह ताला क्यों कबूल करें, जब किसी ने किया ही नहीं इसलिए कि मैं अल्लाह को दिखाऊं और मुझे इससे कोई अजर मिले। तो अब हम तो बहुत एडवोकेसी करते हैं ना, जैसे पिछले दिनों मैंने किसी प्रोग्राम में सुना, तो वो जो होस्ट था उस वो डिस्कशन कोई हो रही थी, तो उसने ये कहा कि फलां कोई आदमी है तो उसने लोगों की भलाई का ये इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी इन्वेंशन की है, उसने किसी चीज़ के बारे में कह रहा था, देखो इसमें उसने लोगों का कितना भला किया है। और उसके बाद वो कहने लगा वो तो जन्नती आदमी है। तो दूसरे ने उससे कहा कि वो जन्नती कैसे हो गया, वो तो मुसलमान भी नहीं है। तो उसने कहा मैं तो नहीं इस बात पर यकीन रखता, ये होंगे मौलवियों के फलसफे, लेकिन मैं नहीं इस बात पर यकीन रखता, जिसने किसी के लिए भलाई का काम किया बस वो जन्नती ही है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं। तो देखिए ये मेरे आपके करने से नहीं है, जिसने अल्लाह की खातिर किया ही नहीं, अल्लाह उसका रिवॉर्ड क्यों दे, खुद बताएं। अच्छा आपके घर में कोई नौकर काम करे ही नहीं, आपका उसने काम किया ही नहीं है, हमसाए का जाके कर रहा है, चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, वो आके आपको कहे जी मुझे इसकी तनख्वाह दे, तो आप कहेंगे नहीं कि तुमने कोई मेरा किया काम, मेरे लिए किया है, जब मेरे लिए काम किया ही नहीं है तो फिर मैं किस चीज़ का तुम्हें रिवॉर्ड दूँ। तो जो अल्लाह को मानते ही नहीं सिरे से, उसके लिए करना तो दूर की बात है, जो अल्लाह के लिए नहीं करेगा उसको भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, जाहिर है वो उसके लिए काम कैसे कर सकता है, वो तो उसने बिलीव ही नहीं कभी रखा, ये बिलीफ ही नहीं है उसका कि अल्लाह है, या उसका बिलीफ ही नहीं है कि अल्लाह हमारा रब है, वो तो औरों को मानता है, उनकी पूजा करता है। तो अल्लाह ताला फिर क्यों उसको दे, वो जाए जाके उन्हीं से ले जिनके लिए उसने किया है। वो क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला फरमा देंगे कि जिनके लिए तुमने किया अल्लाह हर शरीक से पाक है, जाओ जिसके लिए तुमने किया उसी से जाके लो। तो एक तो बात ये है कि जिसका ईमान नहीं है ना, उसके नेक आमाल चाहे कितने ही हों, कभी कभी इतने हम वाकई मैं खुद मुतासिर होती हैं इतनी इनकी चीज़ें देख के कि अल्लाह अकबर, ना इन्होंने किसी से कोई पैसे लिए, ना किसी की खातिर की, यानी लोगों की खातिर किया कि हमें वॉट एवर उनका रीज़न होगा, उनको शौक होगा किसी की खैर और भलाई के काम करने का, लेकिन क्या ये सारे हबाम मंसूरा बन जाएंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा इसका उनको, कितनी बड़ी हसरत है ना कि वहां पे पहुंचेंगे तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वहां के लिए उन्होंने किया ही नहीं। ये तो हम ही वकालत करते हैं ना उनकी कि वहां पे उनको मिलना चाहिए, वो उनसे तो जाके पूछ लो, उनको तो नहीं वहां चाहिए, उन्होंने वहां के लिए किया ही नहीं, तो अल्लाह ताला क्यों दे उनको? लेकिन हमें मुसलमानों को ना बहुत फिक्र रहती है, हम कहते हैं वो उसको जन्नत मिलनी चाहिए, वो तो कह नहीं रहा कि मुझे मिले, ना उसने जन्नत के लिए किया है, लेकिन आप खामखा वकालत करते रहे। तो इन बातों को कहने से पहले और सोचना समझना चाहिए कि इस बारे में जिसने कबूल करना है उसी ने जब कह दिया कि मैंने नहीं कबूल करना ऐसे अमल को, जिसने मेरे ऊपर ईमान ही नहीं रखा, मैं क्यों उसका कबूल करूं और मैं क्यों उसको रिवॉर्ड दूं? अल्लाह के जिम्मे नहीं है उसका अजर, तो वो सारे अमल उसके इतने बड़े बड़े अमल होंगे, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, उड़ जाएंगी सारी। तो ईमान शर्त है और खलूस से नियत शर्त है, खालिस नियत, खालिस नियत ना हुई तो चाहे अब मुसलमान है लेकिन नियत उसकी खालिस नहीं है तो मुसलमान का भी अमल कबूल नहीं होगा। जैसे हमने वो शराब का जिक्र पढ़ा था कि क्या है, या उनके अमाल उस रेत के टीले से उसको मिसाल दी गई जो दूर से पानी की तरह नजर आता है, जिसको देख के प्यासा समझता है कि हाय पानी है, जब वहां पहुंचता है तो सारी उम्मीद टूट जाती है, कुछ भी नहीं वहां पे, वहां पे तो अल्लाह की जात है जो हिसाब लेने के लिए। इसी तरह सिर्फ काफिर के ही अमल जाया नहीं होंगे वहां पे, मुसलमानों के भी अमल जाया होंगे, और कौन से मुसलमानों के, जब खलूस नियत ना हो या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ना हो, खुद ही से अपनी तौर पे ईजाद किए हो। और इनमें ठीक है ये देखना तो आसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं, सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है ना वो है नियत का इखलास। बहुत सारे नेक अमल भी उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके पास तहामा के पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, तहामा कुछ पहाड़ों का नाम है, तहामा के पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, यानी इतना नेकियों का बड़ा ढेर होगा कि नेकियां पायल अप होते 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 पहाड़ के बराबर हो जाएंगी, हत्ता कि जब उनको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हबा मंसूरा कर देगा, फिर उनको दोजख में डाल देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो सालिम ने कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हों, ये बताएं वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो लोग नमाज पढ़ते होंगे, रोजे रखते होंगे, नींद से बेदार होके रात को कयाम करते होंगे, लेकिन जब इनके ऊपर कोई हराम चीज पेश की जाए तो वो उस पर उछल पड़ेंगे, यानी हराम को कबूल करने वाले, अल्लाह ताला इनके नेक आमाल को जाया फरमा देगा, हराम हलाल की तमीज ही नहीं रखते, हराम के ऊपर ऐसे उछल के पड़ जाते हैं, हराम के ऊपर ऐसे यानी मर मिटते हैं, हराम का ऐसे लालच रखते हैं, हालांकि नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कयाम करते हैं, हराम की फिक्र नहीं है, हराम खाए जा रहे हैं, हराम लिए जा रहे हैं, हराम देखे जा रहे हैं, हराम सुनते हैं, हराम उनकी जिंदगियों में शामिल है, जिस चीज को रब ने हराम कह दिया वो बोलते हैं। हराम सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, कोई भी हराम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो यानी मतलब क्या हुआ कि वो हराम चीजों और हराम कामों को हलाल समझते हैं। तो देखें ये कितनी अल्लाह की तरफ से, यानी एक वो है कि जो हराम को अपने ऊपर हलाल कर लेता है, अल्लाह ने हराम किया है चाहे वो चीज है खाने की है पीने की है या काम है करने का, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया वो उसको हलाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हलाल किया हुआ था जिंदगी में, तो आज देखो इतनी बड़ी बड़ी नेकियां उनकी जाया हो गई। पहाड़ों जैसी नेकियां भी कबूल नहीं। हाँ, हमारे जहनों में क्या बात होती है, हम समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में कि जो हमने नेकियां कर ली हैं ना, उन्होंने कभी नहीं जाया होना, वो वैसी की वैसी रहेंगी। इसीलिए हम हर वक्त गिनते ना, हमने इतनी नमाजें पढ़ ली, इतने रोजे रख लिए, हमने उम्रे पता है इतने किए हैं, और कुरान हमने इतनी दफा खत्म किया हुआ, क्योंकि हम कभी हमारे जहन में आता ही नहीं है कि कभी नेकियां भी जाया होती हैं। मगर आप देख लें इस हदीस से, हराम से इतनी बड़ी बड़ी नेकियां, तहामा पहाड़ बराबर भी होंगी तो उनका भी कोई वजन नहीं निकलेगा, और अल्लाह ताला को जरा भी परवाह नहीं कि किसी की नेकियों को खत्म कर दे, बस जाओ। ये तो देखें, अभी हमारे पास रिजल्ट कार्ड ही नहीं है, तो हम फखर किस बात पे करते हैं? पता नहीं है कबूल हो भी रही या नहीं है, इनका कोई वजन लगेगा भी या नहीं लगेगा, वो होंगी, नजर आएंगी वहां पे, लेकिन आपने कभी इन इन ये जो गर्द है, इसका कभी कोई वेट देखा है? इस गर्द का आप ढेर भी लगा दें, वेटलेस है, कितने सारे जर्रे हैं, देखिए आपको मिलियंस मिलियंस जर्रे, मेरे ख्याल हम गिन तो नहीं सकते, ये जो हमारी सिर्फ एक खिड़की से हमारी आ रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, हम इन जर्रों को गिन नहीं सकते, इतने सारे हैं, मिलियंस है। लेकिन हाथ से ऐसे करें, आप पकड़ने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं दे रहा ये। तो अल्लाह ताला को नहीं परवाह है क्या? आप इतने बड़े बड़े अपने खुद, जो इसको हम बड़े बड़े काम कह रहे हैं, कि वो उनको ऐसे हवा में उड़ा दे और वो वेटलेस हो जाए, वो चाहे तो आपके खजूर का एक खजूर के सदके को, वो भी हदीस में आता है ना, उसको ओहद पहाड़ के बराबर कर दे, और चाहे तो हवा मंसूरा बना दे। फर्क कहाँ पड़ा? अगर मुसलमान है तो एक का तो पता चल गया ना, इसका ईमान ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो पता ही है कि उसकी तो ऐसे उड़ ही जानी है, लेकिन जो मुसलमान है, कितनी बड़ी हसरत है ना उसके लिए कि मुसलमान है और फिर भी उसकी नेकियां ऐसे उड़ गई, क्योंकि नियत खालिस नहीं थी। नेकियां करने की कोशिश तो सारे ही करते हैं, सबके कुछ ना कुछ, सब ने जमा किया हुआ, मगर नियतों का फर्क अजर में फर्क डालेगा, रवैयों का फर्क, सबकी नेकियों को डिफरेंट डिफरेंट वेट सबकी नेकियों के होंगे, सब इक्वल नहीं हो सकते, जो मैं कर रही हूं और जो आप कर रही हैं, इक्वल नहीं हो सकता, डिपेंड करता है आपने उसको कितने अच्छे तरीके से किया, आपकी नीयत क्या थी और मेरी नीयत क्या थी। हो सकता है कि मेरी नीयत में कोई रियाकारी आ गई हो और मेरा बड़ा सारा अमल जो आपको बहुत बड़ा नजर आता है वो वेटलेस हो जाए, उसका जीरो वेट हो जाए, हो सकता है आपका छोटा सा अमल हो और वो ओहद पहाड़ जितना हो जाए, हम क्या कह सकते हैं? तो आप आज भी देखें, हम सारे कोशिशें कर रहे हैं, कुछ लोग हैं हम में से कि नेकी की तरफ आते हैं, लेकिन उनको दूसरे खींच खींच के लेके आते हैं, दूसरे उनको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, वो आ जाते हैं, नेकी कर लेते हैं, लेकिन आप देखें उनकी नेकी का कैसा क्या वेटेज होगा। आप थोड़े से, मैं आपके सामने ना सिचुएशंस रखती हूँ, फिर आप खुद देखें हम इंसानी तौर पर ही होके क्या इनको मार्क्स देते हैं, तो फिर आप देख लेना कि अल्लाह के यहाँ क्या मार्क्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसको आप खींच खींच के लाती हैं, क्लास में लेकर आती हैं, आओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितने उसको कॉल्स करते हैं, फिर वो आते ही हैं, फिर जरा सी उनके शान के खिलाफ कोई बात हो जाए तो कहते हैं ये लें पकड़े अपना काम, हम जा रहे हैं, बस हम नहीं ये कर सकते, हम नहीं पढ़ेंगे आप आज से, क्योंकि बस ये क्यों कहा गया, ये क्यों बात कही गई। तो इसका मतलब है कि जब तक उनकी शान में कोई बात नागवारी की ना हो, तब तक तो वो नेकी करेंगे, तब तक तो वो आएंगे, हिस्सा लेंगे, जब उनकी शान के खिलाफ जरा सी भी बात हो जाए तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। उसकी आप उसको क्या मार्क्स देती हैं? अल्लाह की खातिर तो नहीं करते ना, फिर तो अपनी नफ्स की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, ऐसों की कदर तो इंसान भी नहीं करता तो अल्लाह क्या करेगा। फिर कुछ लोग हैं जो नेकी करते हैं, सिंसियर भी होते हैं, मगर उनको मुसलसल पुश चाहिए होता है, हर वक्त धक्के स्टार्ट के बगैर वो चलते ही नहीं, वो वो एक गाड़ी होती है ना, वो हर जगह जाके रुक जाती है, थोड़ी सी देर जाती है आगे जो रुक जाती है, कभी भी आप लॉन्ग रूट पे उस गाड़ी को नहीं चलाते। क्यों? आप कहते हैं इसका क्या पता, मैंने तो 2-3 घंटे के सफर पे जाना है, ये गाड़ी बीच में ही रुक जाएगी। तो अल्लाह ताला उनसे बड़ा काम नहीं लेते, क्योंकि वो धक्के स्टार्ट लोग हैं। बड़ा काम अल्लाह ताला उन लोगों से लेते हैं जो धक्का स्टार्ट नहीं होते, जो रिलायबल पीपल होते हैं, वो धक्के स्टार्ट हैं। अगर किसी ने कॉल कर दिया या उनके ऊपर कोई चेक है या टीचर सामने है, तो फिर तो काम करेंगे। पुश पुश चाहिए होती है हर वक्त, हर वक्त उनको मोटिवेशनल लेक्चर चाहिए होते हैं। अगर मोटिवेशन मिल गई उस दिन, बड़े जोशो खरोश से खड़े हो गए, और आज तो बस मैंने तीर मार देने, और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर हवा निकल गई। टीचर शहर में मौजूद है तो बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, टीचर नहीं है तो फिर आप क्यों काम करना है? आप आराम से बैठे, खुद ही आप मार्क्स दें कि आप इनको क्या मार्क्स देंगे, कुछ सोचे ना। सोचिए आपको रखा जाए कि ये इनको जरा चेक करें, आप इनको नंबर लगाएं, तो आप क्या नंबर लगाएंगी ऐसे बंदे को? और ऐसे बंदे से अल्लाह ताला बड़े काम नहीं फिर लिया करता, फिर वो छोटे छोटे काम ही सारी जिंदगी करते रहते, क्योंकि वो धक्के स्टार्ट है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं, और सुभान अल्लाह, मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो इस क्लास में भी हैं कुछ ऐसे लोग। वो गुमनाम लोग हैं, ना उनका कोई जिक्र आता है, ना वो बढ़ बढ़ के अपने कारनामों की लिस्ट हर वक्त बताते रहते हैं, वो बस खामोशी से काम करते रहते हैं। वो हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनको कोई पुश करने वाला नहीं है, कोई उनको चेक करने वाला नहीं है, कोई उनको शाबाशें देने वाला नहीं है। कहीं है ना कोई शाबाश के मोहताज है, उनको शाबाश दी तो वो उनके लिए धक्का है, शाबाश ना मिली तो धक्का नहीं है, बस फिर ठीक है रुक गए। तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, किसी ने उनको बार बार फोन नहीं किया, किसी ने उनको रिमाइंड नहीं कराया कि प्लीज ये काम कर दें, ये किसी ने उनको ये भी नहीं कहा है कि ये आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, बस वो खुद ही कर रहे हैं। उनको शायद ये पता है कि हमने करना ही है, खुद ही करते चले जा रहे हैं, और खामोशी से। कभी हमें आके पता चलता है कि अच्छा ये लोग भी कहीं काम कर रहे हैं। जब पता चलता है ना, फिर मुझे खुद भी नहीं पता होता कि ये कुछ ऐसे लोग हैं। अब वो उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, तो मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आखरत में सब हैरान रह जाएं कि अच्छा ये भी लोग थे, ये भी हमारे साथ के ही लोग थे, ये जो इतना काम कर रहे थे, अल्लाह इतना बड़ा इनको अजर देना। बाज़ लोग बातें बहुत करते हैं और दूसरे के कामों को भी बहुत डिस्कस करते हैं, फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनको दूसरों की कोई परवाह नहीं, वो लगे हुए अपने काम में, क्योंकि जिसने काम करना है ना उसको ये देखने की फुर्सत नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा वो ये कर रहा है, वो फलाना वो कर रहा है, फलाना वो, भाई आप अपना तो काम करो, ये आपको क्या क्या आपको फायदा मिलेगा इस चीज से कि वो क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा। तो ये लोग खामोशी से काम किए चले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप किसको ज्यादा नंबर देंगे, आपको किसका काम देख के सबसे ज्यादा खुशी होगी? फिर जब आप इन सबको देखते हैं, अब आप ऐसी मसलन पोजीशन पे हैं कि आपको सबके काम पता चल रहे हैं, जितने जितने इंसानी हद तक हो सकते हैं, आपके दिल में सबसे ज्यादा कदर किसकी आएगी? आप किसको सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे? तो ये तो हम इंसान हैं छोटे से, अब सोचें कि जिस रब की खातिर वो काम कर रहे हैं उसको उनकी कितनी कदर आएगी ना। और वो सबको ही देख रहा है कि कौन है जिनको पुश चाहिए, कौन है जो बार बार रुक जाते हैं। टीचर नहीं देख सकता, वो भी इंसान ही है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। जो अल्लाह की खातिर चलने वाले होते ना, उनको कोई पुश नहीं चाहिए होती, उनको कोई धक्का नहीं चाहिए होता, उनको हर वक्त किसी का दर्स नहीं चाहिए कि कोई दर्स देगा तो हम चलेंगे, दर्स नहीं सुना तो बस छोड़ो अब क्या करना है। जिस दिन सुन लिया उस दिन बहुत वो हो गई, जिस दिन नहीं सुना बस थोड़े दिन गुजर गए तो अब छोड़ छाड़ के बैठ गए। और कईयों को अपनी ईगो का इतना मसला होता है कि वो अपनी ईगो की उस पर ना कोई हर्फ आए उसके मुताबिक काम करते हैं। जब तक ईगो पे कोई हर्फ नहीं आता वो चलते जाते हैं, जब ईगो पे हर्फ आ गया तो वो अल्लाह की खातिर काम कर रहे थे क्या, या अपनी ईगो के लिए? फिर कौन बड़ा हो गया, कब तक काम करेंगे वो? और अल्लाह ताला दिखा देता है, सामने आ जाते हैं ऐसे लोग भी, कौन किस चीज की खातिर काम करता है ना, दुनिया में ही वाजे हो जाता है। कुछ लोग तारीफों के लिए काम करते हैं, तारीफ मिले, शुक्रिया मिले, शाबाश मिले, तो बस काम काम, बहुत अच्छा काम, पर तारीफें मुनि, अब तो किसी को पता ही नहीं हम इतना काम करते रहते हैं, और इन्होंने तो हमारा कभी नाम ही नहीं लिया। नहीं, लोगों का भी, इंसानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आज तक हमारा कभी नाम ही नहीं आया? तो देख लें फिर, आपको दुनिया में फर्क पता चल जाएगा, आखिरत में जाके तो बड़े बड़े फर्क होंगे ना। दुनिया में ही अल्लाह ताला दिखा देता है। ये देखो कौन किस तरह से काम कर रहा है, और अल्लाह कदर बढ़ा देता है, उनकी इज्जत बढ़ा देता है, खुद ब खुद अल्लाह बढ़ाता है। वो छुपा के काम कर रहे होते हैं, अल्लाह जाहिर कर देता है। तो याद रखें कि जो नियत में इखलास है ना, वो पता है कैसे है? जैसे टायर में हवा होती है, और टायर आपके पास कितना भी उम्दा टायर, कितना भी महंगा टायर है, उसमें अगर हवा नहीं है ना, वो किसी काम का नहीं है। तो अगर आपके काम में इखलास नहीं है, वो अल्लाह की खातिर नहीं है, तो वो बिल्कुल उस टायर की तरह है जिसमें से हवा खत्म हो चुकी है, पंक्चर पंक्चर हो चुका है, वो कोई काम नहीं देगा। तो हबा मंसूरा, सबसे तो दुख वाली बात है कि ये वो नेक आमाल है, एक तो दूसरे आमाल तो गुनाहों की तो नहीं बात हो रही, ये नेकियां हैं। कितनी मुश्किल है नेकी करना ना, एक एक नेकी करना, उसको जमा करना आसान नहीं है। आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, या आप जिक्र करते हैं, या आप रोजा रखते हैं, या आप उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, सिला रहमी करते हैं, किसी को माफ करते हैं, किसी साथ अच्छा इखलाक करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ लगता है, एफर्ट लगती है, लेकिन सारी एफर्ट्स जीरो जीरो हो जाएंगे। जो सिला रहमी इसलिए करते हैं कि देखें, इसलिए कर रही हूं कि रिश्तेदारों में मेरा नाम हो, इसलिए कर रही हूं कि तो फलाने ने भी मेरा किया था, इसलिए मैं भी चलो उसको कर दूं, तो ये अदले के बदले हैं, यानी ये इनका कोई भी नहीं अजर मिलेगा। कुछ लोग बहुत खाना खिलाते हैं, मगर उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अल्लाह को खुश करना नहीं। कभी ये होता है कि हस्बैंड को बहुत पसंद है कि उनके घर वालों की दावत की जाए, कभी ससुराल में पोजीशन बनाने के लिए, कभी किस तरह की किसी चीज़ के लिए, कभी ये कि चलो इनसे कल को कोई काम वाम पड़ेगा, कभी इसलिए कि आज हम बुलाएंगे तो कल को ये भी हमारी दावत कर लेंगे। तो इसका भी नहीं कुछ अजर। कोई लोग, लोगों की ताज़ियत, तो लोगों के पास ताज़ियत करने या जनाजे पे इसलिए जाते हैं कि फिर वो कहेंगे कि फिर आए नहीं तो बातें बनेंगी, तो इनका तो कोई वजन नहीं होगा। आपने तो अल्लाह की खातिर नहीं किया। और हमारे कितनी सारी अमल हैं जिनको हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये नेकियां हैं, लेकिन हमारी नियत है ही नहीं कि अल्लाह से हमें इसकी इसका कोई अजर मिले, हम अपने रब को राजी कर लें, और हमें ये शौक हो कि इसकी वजह से अल्लाह मुझे जन्नत दे देना। जब ये आपकी नियत ही नहीं है, तो अल्लाह आपको क्यों दे? जब आपकी नियत ये है कि फलां खुश हो जाए, चलो उसका बदला चुका दूं, उसने भी मुझे बुलाया था, मैं भी उसको बुला लूं, वो भी हमारे घर में ऐसी फौतगी हुई थी तो वो भी आए थे, तो हम भी चले जाएं उनके। तो बताएं जरा कि ये तो सारे हम अदले बदले ही चुकाने में लगे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वहां पे जाके इनका कोई भी ना वजन हुआ, जिनको हम आज नेकियां समझ रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा? तो कितना थकता है इंसान, जिस्म को भी थकाता है, जहन भी थकाता है, काम करता है और फिर नेकी जमा करता है, लेकिन याद रखिएगा इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी नेकियां इसलिए भी हबाम मंसूरा बन जाती हैं क्योंकि उसके बाद आप कोई ऐसा अमल कर देते हैं कि वो नेकी मिट जाती है, तब भी वो वहां पे नजर आएगी लेकिन उसका कोई वेट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे सदका दिया लेकिन उसके बाद एहसान जता दिया, तो ये क्या हो गया? वो नेकी जो होगी उसका अमल जीरो हो गया, उसका अजर जीरो हो गया, वो गुबार बन गई। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी नेकियों का वहां पे वजन हो, तो हर काम करने से पहले सोचे मैं क्यों कर रही हूं, अपने आप को ना खुद क्वेश्चन किया करें, अपने आप को खुद अपने अंदर ना सबसे बड़ा डंडा लेके बजाय लोगों के ऊपर खड़े होने के ना, कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, और मैं हर एक की बस वो मैं रहूं कि कोई गलत ना करे, अपने ऊपर रहे डंडा लेके खड़े हों, और अपने आप को हर वक्त चेक करते रहें, हर वक्त अपने आप से पूछती रहें, जैसे हम लोगों से पूछने के लिए होशियार रहते हैं, अपने आप से पूछने के लिए होशियार हैं, क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रही हो? तुम्हें ये चाहिए? इसके लिए तुम कर रही हो? तुम्हें इस चीज के लिए नहीं करना, तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। उसके बाद आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करके भी आप मुतमईन रहेंगे। उसके बाद आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, उम्मीद ही नहीं होगी कि वो कुछ दे आपको। और वो नहीं भी देगा तो आपको तब भी नहीं कोई रंज होगा, क्योंकि आपने उसके लिए तो किया ही नहीं था। तो अपने आप को ठीक करके, अपनी नीयत को सही करके फिर काम किया करें। अस्हाबुल जन्नती, और जन्नत वाले। अब ये पहले जिक्र आया ना कि काफिरों के साथ क्या अंजाम होगा और उनके अमाल के साथ क्या अंजाम होगा, जरा देखें जन्नत वालों का क्या होगा। आपने जो सिलेक्शन की थी पिछले सबक में, ये मुझे ना आयत बहुत ही पसंद भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत वालों का जिक्र और भी जगह पे कुरान में किया है। कुछ जगह पे ना इतनी खूबसूरत ऐसी बात आती है, कोई हर जगह अंदाज मुख्तलिफ है ना मेरे रब का। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया असहाबुल जन्नत ही जन्नत वाले जो होंगे ना, यौमा इस दिन, उस दिन क्या होगा, खैरुम मुस्तकर व अहसनु मकीला, उस दिन बेहतरीन होंगे ठिकाने के एतबार से और कैलूला करने की जगह के एतबार से भी बहुत अच्छे होंगे, कैलूला करने के वक्त के एतबार से भी बहुत अच्छे होंगे। कैसे कि हमने जब पढ़ लिया कि वो वक्त काफिरों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ईमान वाले जो होंगे उनके लिए इतना आसान हो जाएगा और इतना मुख्तसर हो जाएगा। क्योंकि आपको जैसे पता है ना कि कयामत का दिन कितना लंबा है, 50,000 ईयर्स के बराबर है, 50,000 साल के बराबर। और वो 50,000 साल का जो दिन है वो जन्नत वालों के लिए कैसा होगा कि सिर्फ इतनी देर गुजरेगी जितनी सुबह से दोपहर तक। दोपहर होती ना कैलूला, कैलूला किसको कहते हैं आप, ये ना हो मैं कैलूला कहती रहूँ, मकील का मतलब क्या है, कैलूला की जगह, या दोपहर के आराम के बाद जो आराम, जो दोपहर के खाने के बाद आराम करते हैं ना, उसको कैलूला कहते हैं, नैप टाइम जिसको आप जैसे कह देते हैं। तो जो कैलूला का वक्त तक, सुबह से उस वक्त तक जो टाइम होता है ना, इतना सा टाइम लगेगा, फिर वो जन्नत में अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे उस वक्त तक। यानी जैसे हम कहें ना कि कोई सफ़र से आए या कुछ है, तो हम कहते हैं कि भाई आप इंशाल्लाह दोपहर तक अपने घर पहुंच जाएंगे, तो वो लोग भी कैलूला तक अपने घरों में पहुंच जाएंगे, अपने घरों में। उनके घर कहाँ होंगे, जन्नत में होंगे ना, तो उस तक पहुंच जाएंगे। बाकी लोग अभी हिसाब किताब में ही खड़े हुए हैं, बाकी लोग अभी अपना सब दे रहे हैं सवाल जवाब, और ये पहुंच भी गए हैं। जैसे दुनिया में भी ऐसे होता है, जिन लोगों के पास बड़ी सिफारिशें होती हैं तो वो पहले ही कह कहलवा देते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, आपने देखा होगा ना, उनके लिए पहले ही लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे तो नहीं होता, हमारे मुल्कों में ज़्यादा ये रिवाज इस तरह से है, एयरपोर्ट वगैरह पे पहले ही जाके उनके लिए लोग खड़े होते हैं। वो जूं ही जहाज़ से उतरते हैं तो उनको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, वो पहले पहले उनका पासपोर्ट वगैरह लेके, स्टैंप करा के, उनका सामान लेके गाड़ी में बिठाते हैं, वो घर भी पहुंच जाते हैं। अभी उनके साथ के मुसाफिर बेचारे अभी लाइनों में ही लगे हैं, तो घर जाके लेट भी जाते हैं आराम से। तो अल्लाह के यहाँ सिफारिशें तो नहीं होंगी, लेकिन ये जो नेक अमाल है ना, यही समझ लें सिफारिशें हैं। तो अभी लोगों को बड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में, और ये पहले पहले ही जाके सुभान अल्लाह जन्नत में आराम भी कर रहे होंगे, उनका नैप टाइम वहाँ होगा। इब्ने मसूद ने फरमाया कि क्यामत का आधा दिन उस वक्त तक गुजरेगा हत्ता के जन्नती जन्नत में और दोजखी दोजख में चले जाएंगे। और फिर एक रिवायत में ये भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा है कुदरत में मेरी जान है, मोमिन से इस दिन में तख़फीफ की जाएगी, यानी हल्का कर दिया जाएगा, हत्ता कि उसको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में दुनिया में जितना वक्त लगता था, इस पर वो दिन उससे भी कम वक्त में गुजरेगा। सुभान अल्लाह, इससे भी कम वक्त लगेगा। तो वो जन्नत के बागात में जाके कैलूला करेंगे हत्ता के तमाम लोग हिसाब से फारिग हो जाएं। तो इतने लंबे दिन में आप देखें किसी जगह पे इतनी सख्त शदीद गर्मी भी हो, हिसाब किताब भी देना है और सब है। हमें तो ये मुश्किल लगता है कि हम एयरपोर्ट पे लाइनों में खड़े हों, तो खुद सोचें कि वो जो वहाँ पे हिसाब किताब के लिए, जिंदगी भर के हिसाब किताब के लिए रोके गए होंगे, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और इनमें से इनको निकाल के आगे आगे चलें, आप वीआईपीज हैं, आपको आगे आगे, आप जल्दी जल्दी क्लियरेंस आपकी मिलती जाएगी और उस वक्त तक पहुंच भी जाएंगे। इब्ने अब्बास से मरवी है कि कोई साथ ऐसी भी होगी कि जन्नती अपनी हूरों के साथ दोपहर को आराम फरमाएंगे और जहन्नमी शैतानों के साथ जकड़े हुए दोपहर को घबराएंगे। यानी वो जहन्नम में पहुंच चुके होंगे और ये उस वक्त तक जन्नत में पहुंच चुके होंगे। क्योंकि जो जहन्नमी भी कुछ ऐसे हैं ना, जो काफिर हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब भी नहीं, वो तो डायरेक्ट सीधे, उनकी भी क्लियरेंस है, वो भी सीधे जहन्नम में, उनसे कोई पूछ किछ नहीं, फौरन, बस कोई पूछना क्या है, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं, वो सीधे ही जहन्नम में। हजरत इकरमा फरमाते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि किस वक्त जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में। ये वो वक्त होगा जब यहाँ दुनिया में दोपहर का वक्त होता है कि लोग अपने घरों को 2 घड़ी आराम हासिल करने की गर्ज से लौटते हैं, तो जन्नतियों का ये कैलूला जन्नत में होगा, मछली की कलेजी इन्हें पेट भर के खिलाई जाएगी। अब ये ना कोई कहे कि मुझे मछली नहीं पसंद या मुझे कलेजी नहीं पसंद, ये तो सिर्फ दुनिया में एक मिसाल के लिए आपको बताया गया, वरना इसकी कोई भी रिजेम्बलेंस आप दुनिया में नहीं कर सकते किसी चीज़ से। तो ये कैसे लोग होंगे कि ये सिर्फ एक दफा अपने रब के सामने पेश होंगे, बस यही आसानी से हिसाब लेना, फिर ये जन्नत में जाकर दोपहर का आराम करेंगे। ये भी आता है कि जितना जोहर से असर तक के दरमियान का वक्त होता है, सिर्फ इतनी देर तक इनको लगेगी वहां पे, बस इतना इनके लिए समझ लें कि वक्त इनको ऐसा महसूस होगा, इतना शॉर्ट हो जाएगा। आप देखें ना, कोई वक्त होता है किसी के लिए, वो वक्त इतना, वो ही 1 घंटा होता है ना, किसी के लिए वो इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको लगता है एक एक मिनट नहीं गुजर रहा। डिपेंड करता है ना इंसान की कैफियत पे, और जो बड़े आराम में होता है, बड़ी खुशी में होता है, तो वो कहता है लो घंटे का तो पता ही नहीं चला, 1 घंटा गुजर भी गया। और जो मुसीबत में होता है, तकलीफ में होता है, वो कहता है एक एक मिनट गुजारना उसके लिए एक एक साल गुजारने के बराबर हो जाता है। तो कयामत के दिन दो लोगों को लाया जाएगा, एक तो वो होगा जो सारी दुनिया का बादशाह था, उससे हिसाब लिया जाएगा, तो उसकी पूरी उम्र में एक भी नेकी नहीं निकलेगी, तो उसको जहन्नुम में दाखिले का हुक्म मिलेगा। फिर दूसरा शख्स लाया जाएगा जिसने एक कंबल में जिंदगी गुजारी, जब उससे हिसाब लिया जाएगा तो वो कहेगा अल्लाह मेरे पास दुनिया में था ही क्या जिसका हिसाब लिया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा ये सच्चा है, इसे छोड़ दो। यानी उसके पास सारी जिंदगी में क्या था, सिर्फ एक कंबल ही तो था, एक कंबल में उसने जिंदगी गुजार दी, तो उससे हिसाब क्या लेना। उसे जन्नत में जाने की इजाजत दी जाएगी। फिर कुछ अरसे के बाद दोनों को बुलाया जाएगा, तो जहन्नमी बादशाह तो कोयले की तरह हो गया होगा। उससे पूछा जाएगा कहो किस हाल में हो, वो कहेगा नहायत बुरे हाल में और नहायत खराब जगह में हूँ। फिर जन्नती को बुलाया जाएगा, उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। उससे पूछा जाएगा कहो कैसी गुजरी, ये कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और नहायत बेहतरीन जगह में हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ अपनी अपनी जगह, फिर चले जाओ। यानी वो इंसान सारी अपनी जिंदगी की महरूमियां, परेशानियां, तंगियां भूल जाएगा, वो जो फकर में एक कंबल में जिसने जिंदगी गुजारी उसको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या परेशानियां उठाई, और वो बादशाह जिसके पास सारी दुनिया की दौलत थी वो कोयले की तरह हो क्या होगा। वो कहेगा बहुत बुरे हाल में हूँ, बड़ी बुरी जगह पे हूँ, उसको तो याद भी नहीं होगा कि मैं दुनिया में कभी बहुत ही ऐशो आराम में रहा करता था। एक और रिवायत में आता है सईद बिन सवाफ रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मोमिन पर तो कयामत का दिन ऐसा छोटा हो जाएगा जैसे असर से मगरिब तक का वक्त, और ये जन्नत की क्यारियों में पहुंचा दिए जाएंगे, यहाँ तक कि और मखलूक के हिसाब हो जाएं। तो बाकी लोग अभी खड़े ही रह जाएंगे, इनको आगे आगे ले जाके ये कैलूला वहां जाके करेंगे ना, अपने घरों में जाके, अपने महलों में जाके। और इंसान के लिए अपने घर पहुंचना, स्पेशली वो बड़े लंबे सफ़र से आया हो, तो क्या दिल चाहता है, जब आप एयरपोर्ट पे आके खड़े होते हैं सबका क्या दिल चाह रहा होता है, जल्दी जल्दी यहाँ से फारिग होकर घर पहुँचे और आराम करें, है ना। तो ये तो इतना लंबा सफ़र है, मौत से शुरू हुआ, मौत की सख्ती, फिर कब्र की, जाहिर है कब्र में जो मुश्किलात, उसके बाद हशर के दिन की सख्ती। अब उनका दिल क्या चाह रहा होगा लोगों का, कि बस जल्दी जल्दी अपने मकाम पे पहुंचे, जल्दी जल्दी अपने घरों को पहुंचे। असल हमारा घर तो वही है ना, तो अब उसमें किसी को खड़ा कर दिया जाए और हिसाब किताब लंबा लंबा हो रहा है, कितनी घबराहट होगी ना, कितनी थकन होगी। क्योंकि उस दिन सिर्फ यानी एक सख्ती जो जो जहन्नुम का है वो तो एक अलग बात है, वो दिन इतना सख्त है जिस दिन ना सिर्फ ये कि सूरज जो करीब होगा उसकी वजह से जो तपिश होगी वो तो अलग है, भूख का भी एक प्रॉब्लम होगा, प्यास का भी प्रॉब्लम होगा। फिर इंसान को जितना ज़्यादा उस दिन अपने जिस्म पे जो कपड़ा है उसकी हाजत होगी और उसका उसको होगा कि यानी आप कपड़े की जितनी ज़्यादा उसको उस दिन ख्वाहिश होगी, खाने की होगी, पीने की होगी, ये गर्मी से बचने की होगी, कभी इतनी नहीं हुई होगी। और जिनकी लिस्टें जितनी लंबी होंगी, जितना ज़्यादा साजो सामान जिसके पास ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा दुनिया में जमा किया हुआ है, जितनी ज़्यादा दुनिया में फजूलियात काम किए हैं, उनका हिसाब किताब देना भी तो सोचे ना कि कितना लंबा टाइम लगेगा। तो एक तो उस दिन की घबराहट, उस दिन की वहशत, उस दिन की गर्मी, उस दिन की भूख, उस दिन की प्यास, और ऊपर से हिसाब किताब, तो आमाल का भी हिसाब किताब देना, वो भी एक अजाब है। तो एक जगह आता है, जन्नत में कुछ गुरफे ऐसे हैं, यानी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे कमरे हैं जहाँ कुछ ऐसे घर हैं जहाँ नेक लोगों को बसाया जाएगा, ये वो लोग हैं जिनका हिसाब आसान होगा। तो ये लोग दोपहर के वक्त तक फारिग हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह हम इन आयात की तिलावत सुनेंगे।
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا